ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली श्लोक संख्या 26 और 27। चेतस्तत्प्रवणं जंजन चेतस्तत्प्रवणं जंजन स्तावित संगतांजलि श्लक्षया सुक्तया वाचा सर्वलोक गरीयसः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब मेरे पीछे दोहराइए किंतु पहले से उनके हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट हो चुका था, अतः जिस तीन प्रकार उन्होंने ऐसे होना चाहिए, मिस्टेक है प्रिंटिंग, जिस किस प्रकार उन्होंने होश संभाला और हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठात देवों की मधुर शब्द से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को तीन शरीर में विभक्त कर लिया है, जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किनको बुलाया हूं। अत्रि मुनि ने अभी द्वंद्व में पड़ गए हैं। उन्होंने एक देव को आराधना किए थे, लेकिन तीन देव उनके सामने प्रकट हो गए, तो इसलिए द्वंद्वात्मक स्थिति में उन्होंने तीनों देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं वास्तविक किस देव को बुलाया था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आवाहन किया था। भगवान सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहे होंगे, अन्यथा वे इसके स्वामी कैसे बन सकते हैं। दृष्टांत, यदि कोई भवन का निर्माण करता है तो इससे सूचित होता है कि वह उस भवन निर्माण के पहले विद्यमान थे। फलतः ब्रह्मांड की सृष्टा परमेश्वर को त्रिगुणातीत होना चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र सृष्टि की करता है। किंतु यह ज्ञात है कि विष्णु सत्वगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिवतम गुण की अध्यक्ष है। अतः अत्रि मुनि ने कहा, ओ जगदेश्वर, अवश्य ही आप में से ही कोई एक है। जगदीश्वर कौन है? एक है, अनेक नहीं है। किंतु आप तीनों एक साथ क्यों प्रकट हुए हैं? अतः मैं यहां नहीं पहचाना पा रहा हूं कि मैंने किसको आवाहन किया। कृपया मुझे बताइए कि आप में से वास्तव में कौन जगदीश्वर है। वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था। ध्यान रखिए, भगवान विष्णु की स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उसका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकते हैं और जगदीश्वर एक ही है। उनका यह प्रश्न कि उन्होंने किसको बुलाया था, यह सूचित करता है कि वे भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में संशयपूर्ण थे। अतः उन्होंने तीनों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बताइए कि जगत का दिव्य स्वामी कौन है। वस्तुतः उनका विश्वास था कि सारी की सारी भगवान नहीं हो सकते, बल्कि इन तीनों में से एक ही जगदीश्वर हो सकता है। तो क्लास में बैठते समय शिष्टाचार रखना चाहिए और श्रृंखला, तब फिर ये समझा जाएगा कि आप लोग सत्संग में मन रख के आए हैं। हरे कृष्णा। जो चर्चित विषय है आज, ये किसकी प्रसंग में चर्चा चल रही है? अत्रि और, लेकिन ये अत्रि मुनि के विषय को कौन चर्चा कर रहे हैं? उसका मुख्य वक्ता कौन है? जिस नहीं, किसके विषय में चल रहा है? कौन ये जिज्ञासा किए थे? कौन? नहीं, कौन बताए? विदुर और मैत्र। इसलिए प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनने के साथ साथ समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। तो चौथा स्कंद में मनुजी की वंश के विस्तार है। तो मनु की कितने पुत्र थे? दो पुत्र और तीन। तीन पुत्रियां कौन कौन हैं? प्रसूति। तीसरा स्कंद में किस कन्या की विषय में चर्चा हो चुकी है? देवहूति। देवहूति हटाकुति। अभी किसके विषय में चर्चा चल रही है? अरे उनकी है, देवहूति की कन्या के विषय में। ओके, उनके पुत्र के विषय में चर्चा हो गया तीसरा स्कंद की अंतिम, कपिल और देवहूति। उसके बाद उनकी जो नौ कन्याएं हुई थी, तो ये नौ कन्याओं से कैसे विश्व के विस्तार हुआ, उस प्रसंग में कौन बता रहे हैं? मैत्र मुनि ने विदुर जी को बता रहे हैं। तो उनकी पहला पुत्री कौन है? कला। उनकी विवाह किसके साथ हुई? मरीचि मुनि के साथ। तो उनकी दो पुत्र हुए, फिर उनसे तीन पुत्रियां हुई, जो देवकुल्या जो पुत्री है, जो गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है। तो उसके बाद फिर उनकी जो दूसरा कन्या है कौन है? कौन? अनुसूया। उनकी विवाह किसके साथ हुई? अत्रि मुनि के साथ। तो उन्होंने कैसे भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किए। और कौन भगवान? कहे कि त्रिदेव, जो भगवान तीन रूप में अपने को व्यक्त करते हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश। तो विदुर जी ने प्रश्न किए कि तीनों देवों को एक साथ उन्होंने पुत्र रूप में कैसे प्राप्त किया। तो भगवान को प्राप्त करने की उपाय श्रीमद् भागवत में खोज किया गया है कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कि मनुष्य जीवन की ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, अंते नारायण स्मृति। तो स्मृति के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है, इसके उपाय है। तो अत्रि मुनि कि जब विवाह हुई तो उन्होंने विषय भोग नहीं किए, उन्होंने तुरंत कहां चल गए, तपस्या करने के लिए चल पड़े। कहां पर? रुक्ष पर्वत में। और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या किए, एक पैर पर खड़े रह करके। तो भगवान स्वयं बाध्य हुए उनकी तपस्या को देख करके, स्वयं बाध्य हुए उनको दर्शन देने के लिए। जैसे कपिल देव के पिताजी कर्दम मुनि, उन्होंने भी इतनी कठोर तपस्या की है, तो भगवान विष्णु स्वयं आकर के इस बिंदु सरोवर में पहुंचे और कर्दम मुनि की तपस्या देख करके भगवान के आंख से आंसू बहने लगा, जिससे बिंदु सरोवर बन गया। तो उसी प्रकार चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचारी, तपस्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तपस्या के द्वारा हम भगवान को रिझा सकते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, हृदय रूपी मंदिर में हम भगवान को बैठा सकते हैं। तो अभी भगवान तीन रूप में अत्रि मुनि के सामने प्रकट हो गए, सारे गंधर्व देवताओं सब उनकी स्तुति करने लगे, उनकी उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। उसके बाद अत्रि मुनि जब देखे कि तीनों भगवान मुझ पर कृपा करने के लिए मेरे सामने प्रकट हुए हैं, और जिन ही उन्होंने आंख खोले तो तीनों देव को कैसे देखे, हसत्व बदने उपलम्भितान, ऐसे भगवान प्रकट हुए क्या? कली जी को डिस्टर्ब है। भगवान जब प्रकट हुए कैसे, हसत बदन, उनकी मुख हंसते हुए, कृपावलोकेन हसत बदनेन। भगवान कैसे कृपा करते, ऐसा नहीं हाथ उठा दिया है आशीर्वाद दे दिया, भगवान सुंदर मुख कमल और कैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए, वो कभी चिंता से ग्रस्त नहीं रहते हैं। हसत बदनेन, यद्यपि वो हंस रहे थे परंतु उनकी शारीरिक तेज इतनी प्रज्वलित था, प्रखर था, कहते तद रोचिसाम प्रतिहते। अब धारणा करना चाहिए, जब भगवान और भक्त के प्रसंग में चर्चा होता है तो वो स्क्रीन हमारे मन पर चलना चाहिए, एक पैर पर खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके बद्धांजलि, और वो भगवान तीनों रूप में जब प्रकट करके उनके सामने दर्शन दिए तो उनकी मुख को सुंदर रूप से देख लिए, कि तीनों देव हंस रहे हैं। तो इसलिए ये समझ गए हैं उपलम्भितान, इसका मतलब है ये मेरे प्रति सदैव है व मेरे पर प्रसन्न है। परंतु जब उनकी पूरी शरीर को उन्होंने देखने के लिए प्रयास किए तो क्या देखे, तद रोचिसम प्रतिहते, उनकी शरीर से इतनी प्रकाश निकल रहा था तो उनकी दृष्टि प्रतिहते, उनके दर्शन में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे क्या हुआ, निमिल्या मुनिर इक्षणी, तो अत्रि मुनि का आंख चौका चौंध हो गया, आंख बंद हो गया, क्या तेज है। तो फिर उन्होंने प्रभु को जब दर्शन किए कि वो मेरे प्रति प्रसन्न है, इसलिए उनका चेत में हृदय में क्या उत्पन्न हुआ, चेतस्तत्प्रवणं जुंजन, उनकी हृदय में उत्पन्न हुआ क्या उत्पन्न हुआ, प्रवणम प्रेमता, जो भाव भगवान की भक्ति की अभ्यास के द्वारा साधक के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है ये कभी व्यक्त नहीं होता है, परंतु इसको ऐसे ही कहा जाता है कि जैसे समुद्र में लहर उमड़ता है उसी प्रकार साधक के हृदय में प्रेम रूपी लहर उमड़ता है। आनंदम अंबोधि वर्धनम, कहले चेतस्त प्रबणम जुंजन आस्तावितं संगतांजलि, आस्तावित का अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं धीर रूप से धीरे धीरे संगत अंजलि, अपने अंजलि को एकजुट किए, भगवान को देख करके हाथ तो ऐसे ही जब पैर पर खड़े थे हाँ तो हाथ ऊपर होगा, पैर पर खड़े रहने के लिए हाथ को ऊपर करना पड़ता है, परंतु जब प्रभु को दर्शन प्राप्त किए तो एक पैर पर खड़े हैं परंतु दोनों हाथ को अभी नीचे लेके आए। संगतांजलि श्लख्यया सुक्तया बाचा, बहुत आदर के साथ भगवान की स्तुति बा भगवान की प्रशंसा बा भगवान की गुणगान कैसे होना चाहिए, श्लख्यया श्लख्यया सुक्तया, ये दोनों विशेषण हैं वाचा का, कि वाणी का प्रयोग जो भगवान कहते हैं अनुद्वेगं करंग वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चजत, सत्यम, लेकिन की सत्य बात पास सत्य की अर्थ है कि भगवान परम सत्य के लिए ही वाणी का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए भगवान को स्तुति करने के लिए क्या चाहिए, उत्तम श्लोक वार्तया। श्लख्यया बहुत भाव उनको उमड़ रहा था, प्रेम से गदगद हो गए और उन्होंने सुक्ति से प्रार्थना की, जब सुक्त यहां प्रवणम मग्न जुंजन कुर्बन, वो इतनी भाव से मग्न हो गए थे वो नहीं सोच रहे थे कि मैं अत्रि मुनि हूं, ये शारीरिक दशा से पूरे परे हो गए थे, इसलिए उन्होंने स्तुति प्रारंभ किए। तो भावार्थ दीपिका प्रकाश में बंसीधारी से कहते हैं किस प्रकार स्तुति किए, प्रजापति ही न तोदित अन्यान्य विश्व जानति परितांग बभूवः, हे अत्रि जी तुम्हारी अन्य भी और ऐसे हैं प्रजापति जो कि विश्व की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं, विश्व जानति परितः बभूवः, आस्यह जानतः नामचित बवक्त महस्ते विष्णु सुमतिं भजामहे। परंतु ये सृष्टि के मूल कारण कौन है? भगवान विष्णु, और उनकी भजन करना चाहिए। इमा रुद्राय स्थिरधन्य नह गिरह क्षिप्रस्वधे देवया सोधासह। वो कह रहे हैं कि संहार करने के लिए महेश शिव होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। तो उसके बाद उन्होंने सर्वलोक गरीयसह, जो सारे लोक में प्रशंसनीय है, जिनकी स्तुति सारे लोक में गाया जाता है, जिनकी स्तुति सारे लोक में गाया जाता है, भगवान विष्णु। और उनके जस को कौन गान करते हैं? बड़ी बड़ी देवता जंग ब्रह्मा वरुणेद्र रुद्र मरुतः स्तुवंती दिव्यैस्तवे वेदे संग क्रम उपनिषदा गायंती च सामगः ध्यानवस्ती तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः जस्यांतना विदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। सुरासुरगणी, यहां तक कि असुर लोग भी उनकी स्तुति को सुन करके, उनकी गरिमा को जान करके भयभीत होकर के पलायन करते हैं, इतनी महिमा मान है। और भगवान विष्णु की महिमा को सब जानते हैं, क्योंकि ये तीन लोक में प्रसिद्ध हैं, गरी ऐसी जिनकी गरिमा सब जगह में गाया जाता है, जिनकी जस तीन लोक में फैला हुआ है सर्वत्र, सारे देवता उनकी स्तुति करते हैं। तो वही भगवान की स्तुति अत्रि मुनि ने प्रारंभ किए दो श्लोकों के द्वारा। उन्होंने जिस प्रकार ध्यान किए थे, ऐसा बड़े बड़े भक्त जो होते हैं, भगवान की जैसे जैसे गुण को उनको अनुभव होता है, तो इसी प्रकार वो स्तुति करते हैं। और भगवान उनकी गुणगान करने के लिए शक्ति स्वयं प्रदान करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज भगवान की तपस्या किए, उनके ध्यान किए, जब भगवान प्रकट हुए, उनका दर्शन करके ध्रुव महाराज का कंठ रुद्ध हो गया। वो कुछ गुणगान करने में असमर्थ थे, परंतु भगवान ज्यों ही उनके वेदमय शंख को उनके कपाल पर स्पर्श किए, तो तुरंत ध्रुव महाराज ने स्तुति करना प्रारंभ किए। ज्वंतः प्रविष्ट मम वाच इमं प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्य सहस्त चरणः श्रवणातुकादिन प्राणं नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो उसी प्रकार अत्रि जी के मन में भी भगवान ने प्रेरणा दी, क्योंकि उनकी हृदय में भगवान की गुणगान करने के लिए चाह जब हुआ, तो भगवान ने उनको शक्ति व प्रेरणा प्रदान किए, उन्होंने स्तुति प्रारंभ किए। विश्वादुभव स्थिति लयेषु विभज्यमाने माया गुणैरनुजुगम विगृहीत देहा। विश्व उद्भव स्थिति लयेषु, विश्व की उत्पत्ति, विश्व की पालन और विश्व की लय संहार के लिए विभज्य मान अपने को भाग किए हुए हैं। किसके द्वारा? माया गुणैर, माया गुण अर्थात माया की तीन गुण, गुणे बहुवचन है, तो माया गुणे माया की तीन गुण है, सत्व रज तमह। ये तीन गुण को धारण करके विगृहित देहा अनुजोगम कल्पांतम, ब्रह्मा जी की एक जो कल्प होता है, एक दिन उसमें प्रलय हो जाता है, फिर कल्प की अंत होने पर फिर सृष्टि होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रा आगमे अवसह पार्थ प्रभवन्ति आहार गमे। दिन की प्रारंभ होते ही फिर सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी जब दिन प्रारंभ होता है तो उस समय भगवान इस सृष्टि की सर्जन करने के लिए रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा और पालन करने के लिए सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु और संहार के लिए तमोगुण को स्वीकार करके महेश के रूप में प्रकट होते हैं। विगृहीत देहा, अलग अलग प्रकार के देह को धारण करते हैं। विगृहीत देहा ते ब्रह्मा विष्णु केशः प्रणतोऽस्मि अहम्। वही प्रभु जिन्होंने तीन रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार करते हैं, अहं प्रणतोऽस्मि, मैं नतमस्तक होकर के अपने सिर को झुका करके मैं प्रणाम करता हूं। स्तेव्य कैव भवतां मे इहोपभूतः। परंतु अत्रिजी कहे, प्रभु मैं तीनों को सम्मान करता हूं, ऐसे किसको डिरेस्पेक्टेड नहीं करना चाहिए। वैष्णव सबको ही सम्मान करता है, क्यों ना वो जानता है कि सबके हृदय में कृष्ण विद्यमान है, उनके स्वांश बा विभिन्नांश। इसलिए अत्रि जी भगवान को प्रणाम तो किए, परंतु इन तीनों देव में भगवान विष्णु की स्थिति की वो ठीक से नहीं जानते थे। इसलिए भागवत ये संदेश देता है कि हम भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमद् भागवतम की परम लक्ष्य हैं, कौन है? आश्रय। जो भागवतम के 10 विषय हैं, अतः सर्ग विसर्गस्य स्थान पोषण उतयः मन्वंतर ईशान कथा निरुद्धम मुक्ति आश्रय। जो भगवान सबकी आश्रय हैं, सर्वाश्रय हैं, उनकी स्थिति को समझने के लिए भागवत में सारे प्रसंग है। नवानाम इह लक्षणम दशमस्य विशुद्धार्थम। भगवान कैसे सबके आश्रय हैं, सबके कैसे नियंता हैं, तो इस विषय को जानने के लिए इस भागवतम के प्रसंग है। कहते स्थिति विश्व उद्भव स्थिति लयेशु, तीनों में से उनकी हाथ है, क्योंकि वही कारण है। यदि हमको दिखाई पड़ता है कि सृष्टि कार्य दुर्गा देवी के द्वारा होती है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति एक एक शक्ति है, कौन ये शक्ति है? कौन है? दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय जस्त्रा दुर्गैव हिंचं विष्णु सरियम, क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधना छायैव एव। लेकिन उनकी निज शक्ति नहीं है ये छाया शक्ति, तो भगवान ही मूल शक्ति है, वो शक्तिमान है, उनकी छाया प्रकाश ही कौन है? दुर्गा देवी। छाई वजस्य विभर्ति दुर्गा। और वो छाया भी वो ऐसे स्वतंत्र नहीं है, वो मूल वस्तु का अनुसार ही छाया भी चलता है। तो इसलिए दुर्गा देवी स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। विष्णु तया विभाति, तो विष्णु ही सृष्टि करते हैं, परंतु ये उनकी निर्देशन में कार्य करती है। परंतु सृष्टि की स्वरूप को रचना करने के लिए वीरराघव आचार्य कहते हैं विश्वत उद्भव आदिसु निमित्तः भूतेषु विश्व सर्गादि अर्थम इति अर्थम अनुजुगम प्रतिकल्पम विभज्यमानैर माया गुणैः रजः सत्व तमोभि उपलक्षिताः गृहीता देह। तो भगवान की जो माया शक्ति है वो माया शक्ति ही तीन रूप धारण करता है, तीन रूप धारण करता है। ये तेजुयं ब्रह्मा विष्णु गिरिशा, ये तीन देव हैं। अतस्तेभ्यं वो जुष्माभ्यं प्रणत अस्मि, जुष्मा का मध्य एक एव भगवान, ये तीनों में से एक ही भगवान है जिन्होंने विभिन्न रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, वो जगदीश्वर हैं। प्राणतस्मि जुष्माकं मध्य एक एव भगवान जगदीश्वर उपहृतम शरणं तं प्रपद्ये इति एकस्य निर्दिष्टः स्यात् स एव जुष्माकं कतम इति जुष्माभिर एवं कथनीयम इति अर्थ। वो कहते हैं कि तीनों तो रूप धारण किए लेकिन तो आप एक ही हैं, मैं एक की शरण में जाता हूं, तीनों की शरण में नहीं जाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणं व्रज। तो अत्रि मुनि के परमात्मा संबंधी ज्ञान है लेकिन वो परमात्मा परमेश्वर हैं, सबकी ईश्वर हैं, ईश्वर परमा कौन है कृष्णा। तो ये विषय में उनके ज्ञान नहीं है, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी पाद ये कहते हैं कि जो माया गुणी है तो माया गुण को ब्रह्मा और शिव स्वीकार करते हैं परंतु भगवान विष्णु इस माया को स्वीकार नहीं करते, वो आत्म माया है, अपने स्वयं शक्ति को ही स्वीकार करते हैं। संभवामी आत्मा मायया अजोपि, भगवान कहते हैं ना भूतानम ईश्वर अपिसन प्रकृति सोमदृष्टाय संभवामी आत्मा मायया। भगवान अजन्मा है परंतु जब प्रकट होते हैं वो किसी शक्ति का आश्रय नहीं लेते, स्वयं शक्ति को प्रकट करते हैं। परंतु अत्रि मुनि अभी द्वंद्व में पड़ गए हैं कि यदि एक ईश्वर है, हाँ सबकी कल्पना की गई है कि एक ईश्वर ही है, तो फिर ये अलग रूप में क्यों प्रकट हुए, इसके कारण क्या है। और दूसरा कह रहे कि मैं एक ही भगवान की शरण लेना चाहता हूं, आप में से कौन है मुझे बताइए। तो भागवत के प्रारंभ में पहला स्कंद में ऐसे सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए थे तो हम किस देवता की शरण में जाए, तो सुत गोस्वामी पाद ये कहे कि सत्व रजस्तम इति ही प्रकृति ही गुणस्ते युक्त परा पुरुष एक इहस्य धत्ते स्थित्यादय हरिविरंची हरैति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनु नृणांश। ये जो तीन प्रकार जो गुण है सत्व रजह तमा इति प्रकृति गुणैस्ते, ये प्रकृति की गुण है और उसके द्वारा युक्त पर पुरुष यह अस्य धत्ते, एक पर पुरुष है परम पुरुष है जो इनके पास तीन गुण मौजूद हैं, इन्होंने धारण करके रखे हैं। इसलिए दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी क्या गाते हैं केशव ध्रुता, तो उन्होंने धारण करते हैं भृगुपति रूप कश्यप रूप, तो उनकी एक क्या है रूप है। एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के ड्रेस पहन करके वो आता है रोल करने के लिए, जिस प्रकार मंच पर आवश्यकता है कलाकार की, तो उसी प्रकार भगवान ये सृष्टि की पालन सृष्टि के सर्जन और सृष्टि के संहार के लिए तीन रूप में अपने को विस्तार करते हैं। स्थित्य आदय सृष्टि की प्रारंभ है, परंतु मनुष्य को किसकी शरण लेना चाहिए, कहते श्रेयांसी नृणांशी हो तत्र खलम सत्तो तनु हो, तो सत्तो तनु जो है सत्तो गुण से बना हुआ शरीर कौन किसकी है भगवान विष्णु, कहते क्यों उनकी शरण लेना चाहिए। तो लजिक सुतगोस्वामी प्रदान करते हैं कि पार्थिव दारुणं धूमस्तस्मात् अग्नित्रयमयम् जैसे अग्नि की तीन रूप होता है, जैसे पार्थिवात मिट्टी से उत्पन्न होता है, कौन वृक्ष दारू, उससे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। परंतु जब हम लकड़ी को घिसते हैं तो पहले क्या उत्पन्न होता है, उसमें धुआं उत्पन्न होता है, अर्थात वो साइन देता है कि उसके अंदर अग्नि है, इसको कहते दारुणी। हाँ, ऐसे यज्ञ करने के लिए पहले क्या करते थे, लकड़ी को मंथन करते थे, हाँ दारू को मंथन करते थे, तो उससे जो अग्नि उत्पन्न होता था तो वही अग्नि को हम यज्ञ में व्यवहार करते थे। तो जैसे मिट्टी से श्रेष्ठ है, सॉरी लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं, और धुआं से श्रेष्ठ है अग्नि, तो उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण, और रजोगुण से श्रेष्ठ है सत्वगुण। तो जैसे यज्ञों की अग्नि के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, व आग के द्वारा हम भोजन पका करके खा सकते, धुआं से नहीं व लकड़ी से नहीं। लकड़ी से भोजन पक सकता है क्या, नहीं पक सकता। तो मैंने अग्नि, तो उसी प्रकार यदि भगवान अपने को ही विस्तार करते हैं, ये अग्नि की ये तीन रूप है। जब आप तत्व लक्षण पढ़ेंगे तो सृष्टि की उत्पत्ति किससे होता है, पहले आकाश से उत्पन्न होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु से ही सत्वगुण से रजोगुण और रजोगुण से तमोगुण की उत्पन्न होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सत्वगुण के आश्रय लें, क्योंकि ये ही सत्वगुण ही मनुष्य को श्रेय प्रदान करते हैं। श्रेयांसी तनु नृणांसी हो, जो मनुष्य को श्रेय प्रदान करने वाला है ये है सत्वगुण। इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान हैं, मुनि हैं, ये पहले भगवान विष्णु जो सत्वगुण की अधिष्ठात देव हैं, वा जिनकी शरीर सत्वगुण है, विशुद्ध सत्व हैं, तो उनकी भजन किए हैं। भेजिरे मुनय अथ अग्रे भगवंतम अधोख्यजम सत्व विशुद्ध खेमाय कल्पांते ये अनुतान इह। तो मुनि लोग ने जो पथ दिए, तो उस पथ को यदि कोई अनुसरण करता है तो उनको भी खेमाय परम लाभ प्राप्त होता है। परम लाभ क्या है, भगवद गीता में कहा गया है जंगलभ्या परमं लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ये परम लाभ क्या है, जंगलभ्या चा अपरंग लाभम, और कोई दूसरे लाभ और कोई कमाई करने के लिए इच्छा नहीं होता है, अड़म पर्याप्त हो गया है। मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन स्थितो न दुखे न गुणापि विचाल्यते। यहां तक बहुत कठिनाई में, बहुत विषम परिस्थिति में, जिस अवस्था में हमारे मन नहीं डोलता है, उस अवस्था को कहते परम लाभ। यह है भक्ति। इसलिए अन्य रूप की उपासना श्रीमद् भागवत में नहीं कही गई है। जिनके अल्प बुद्धि संपन्न है तो वो ही देवताओं की आराधना करते हैं। इसलिए नारायण कलाशांत भजंती ही अनुसूयव। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यदि भक्त लोग भगवान नारायण की आराधना करते हैं, किंतु अन्य देवी देवताओं को जो घोर रूपा जैसे भद्रकाली हैं, उनके अनादर नहीं करते हैं, सबको सम्मान करते हैं। जैसे कि अत्रि मुनि ने ये तीनों देव को सम्मान करते हुए परम पुरुष की जिज्ञासा करे कि आप में से कौन है परम। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये परम जिनकी जो सबके आश्रय है उनके निर्णय लिया गया है। दसम स्कंद में जो परम पुरुष की मुख्य वर्णन है, उस प्रसंग में है कि सभी मुनि ऋषियों ने एक बार चर्चा किए कि वास्तविक तीनों देव में से कौन श्रेष्ठ है, तो इसकी परीक्षा किया जाए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि को परीक्षा लेने की दायित्व दे करके ये सब मुनि ऋषि लोग बैठे रहे। तो भृगु जी तो गए किसके पास? पहले ब्रह्मा जी के पास। तो उनकी परीक्षा थोड़ा सरल था, उन्होंने उनको मन से आदर नहीं किए, प्रणाम नहीं किए, तो ब्रह्मा जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, ये बेटा इतना नालायक है, इतनी शास्त्र वेद पढ़ाने के बाद भी पिताजी को कैसे सम्मान करना है वो सीख नहीं पाया। तो भृगु जी मन पढ़ लिया ब्रह्मा जी की, तो वहां से चल गए। तो फिर दूसरी परीक्षा थोड़ा सा कड़ा था, वाणी से, उन्होंने अपने भाई शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी अपने भाई को देखकर के आदर के साथ आए आलिंगन करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा परीक्षा लेना चाहते, थोड़ा कड़ा परीक्षा, तो उनको वाणी से तिरस्कार किए, अरे हट, कोई राख लगा करके आ जाते हो, कोई शुद्धिता नहीं है, स्नान फान भी नहीं करते हो, स्मशान के राख लगाते हो, मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे शर्म नहीं आता है, मुझे आलिंगन करना चाहते हो, तो इतने में इतनी क्रोध उनका मन में उत्पन्न हुआ, उठा लिया राइफल और मर्डर करने के लिए, अपने भाई को मारने के लिए चल पड़े। लेकिन उमा जी गिर पड़े चरण में, कहें नारी क्या लोग कहेंगे, आप शिव है, मंगलमय है, लेकिन काल सब जगह मीडिया पर छप जाए क्योंकि शिव जी ने अपने भाई को मर्डर कर दिया। तो अब इसलिए थोड़ा शिव जी शांत हो गए, परंतु उनको तो परीक्षा लेना था। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनकी चरण दबा रही थी, तो वो तुरंत गए और एक लात मार दी। और बड़ा परीक्षा ये वाणी से तो किए, एकदम ये शरीर से भी, परंतु भगवान कितने सहिष्णु हैं, ये शांत, इससे उनकी जो आराधना करने वाले भक्त भी इस प्रकार शांत होते हैं, विचलित नहीं होते। नारायणा कड़ा शांतः भजन्ति ही अनुसूयव, कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत। तो ये शांत रूप कैसे देखिए, भगवान कि शरीर में इतनी उन्होंने पीड़ा पहुंचाई, भगवान तुरंत उनकी चरण को पकड़ करके सहलाने लगे, भृगु जी आपके चरण कितनी कोमल हैं और मेरी वक्षस्थल कितनी कठोर है, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, और भगवान ने इनके चरण को सहलाने लगा। भगवान कहे मैं आपको ठीक से स्वागत नहीं कर पाया, आप मेरे घर में आए हैं परंतु मैं कितने नालायक हूं, पत्नी के पास पड़ा हूं, ऐसे आप ठीक मुझे सस्ती है लेकिन आपके चरणों को कष्ट लगा है। तो ऐसी भगवान की व्यवहार को देखकर के भृगु जी के हृदय भी द्रवीभूत हो गया, पिघलने लगा। और भगवान का इतना नहीं, ये चरण कमल को मैं हमेशा ही हृदय में धारण करके रखूंगा मेरी पवित्रता के लिए, ताकि आगे कोई ब्राह्मण के प्रति मेरी इस प्रकार अपराध ना हो। लक्ष्मी जी को तो भगवान स्थान दिए थे, परंतु भगवान ब्राह्मण देव हैं, कैसे इज्जत करते हैं ब्राह्मण को। तो तुरंत भृगु जी आए और सभी मुनि ऋषियों की सभा में घोषित किए कि वास्तविक पूजा के योग्य कौन है, भगवान विष्णु। इसलिए जो अन्य देवी देवताओं को पूजा करता है तो गुण से मुक्त नहीं हो पाता है, खासकर कि जो अन्य देवताओं की आराधना करते हैं जैसे ब्रह्मा शिव आदि, वो कभी भी उनकी आराधक तमोगुण से मुक्त नहीं हो पाता है। जैसे रावण किसकी आराधना कर रहा था, शिव जी की, तो उनकी इतनी मंद बुद्धि था, उन्होंने भगवान उनकी पत्नी स्वयं सीता जी को हरण करने के लिए चाह के, और इतना नहीं बृकासुर ने भी किसकी आराधना कर रहा था, शिव जी की, और शिव जब वरदान करने के लिए आए तो उनको देखकर ही कहा, अरे ये पत्नी तो मेरी हो गया है, शिव जी का कोई घर फर नहीं है, ये स्त्री को रखकर ये क्या करेगा। जैसे रावण ने सीता जी को कहा कि तुम तो देवताओं के द्वारा भोग्या हैं, तुम तो देवताओं के साथ रहना चाहिए, झोपड़ी में रहकर ही क्या कर रहे हो। तो भृगुसुर ने कहा तो नहीं, लेकिन सोचा अरे ये नंग धड़ंग है, इनको कौन पूछता है, हंस तो उनकी सिर पर गंगा जब गिरा तब तक इसका महिमा बढ़ा, लेकिन इसका पास तो कोई है नहीं, कोई कुटिया नहीं है, ना कोई मर्सिडीज गाड़ी है, फिर भी इतनी सुंदर पत्नी को रखा है, कैसे मेंटेन करता है। सोचा कि ये पत्नी यदि मेरे साथ रहेगा तो उनकी शोभा बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने ये वरदान मांग लिया कि मैं जिस पर हाथ रखू वो भस्म हो जाए। देखिए गुरु जी से भगवान से उन्होंने वरदान प्राप्ति कर रहे हैं, और किसको नष्ट करने के लिए, गुरु को ही नष्ट करने के लिए। तो कभी उनकी मति सुधरता नहीं है, हिरण्यकशिपु भी ब्रह्मा जी की ओर से पर था आराधक, उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हां क्या है कि मुझे कोई नहीं मार सके, परंतु इस सारे वरदान मांगने पर भी भगवान विष्णु ने उसको संहार किया। इसलिए भगवान कहते अंत अंतम फलम तेसाम तद भवितो अल्पमेधसाम देवान देव जो जो जानती मदभक्ता जानती माम। तो अन्य देवताओं की पूजा करके जो फल प्राप्त होता है वो अंत होने वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने लीला में ये प्रदर्शित किए कि जब गंगा तट पर ब्राह्मण लोग पूजा करते थे शिव जी की, तो स्वयं जाकर की क्या करते थे, अरे मैं ही महेश की आराधक हूं, मैं ही आराध्य हूं, उनके द्वारा मैं आराधित होता हूं, मेरी पूजा करो। और स्वयं क्या करते थे, शिव जी की पूजा के लिए जो फूल माला जो धूप दीप आदि होता था नैवेद्य, और स्वयं ही फूल माला को पहन लेते थे और सबको खा लेते थे जो नैवेद्य होता था। और लड़कियों को भी वो कहते थे, अरे तुम क्यों दुर्गा जी की पूजा कर रहे हो, बस शिव जी की पूजा कर रहे हो, अगर यदि मेरी पूजा नहीं करोगी तुमको ऐसे पति मिलेगा जिनकी पहले से चार पांच पत्नियां हैं, तो मेरी पूजा करो। तो भगवान तो ऐसे अपने भक्तों के साथ लीला करते थे, परंतु ये शिक्षा है कि हम लोग अन्य देवताओं को त्याग करके सम्मान करते हुए परंतु परम पुरुष की आराधना करना चाहिए। तो यही भागवतम के सिद्धांत है। तो आज गोविंद घोष की भी तिरुभाव तिथि है, जिनके पुत्र थे गोपीनाथ, आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है। देखा भगवान कैसे एक भक्तों की किसी भी कार्य करने के लिए भगवान हमेशा ही तैयार रहते हैं, यही है भगवत्ता। जिसके पास त्याग है, हम कहते हैं महेश के पास बहुत त्याग है, परंतु ये त्याग जैसे भगवत गीता में भगवान कहते काम्यानं कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयः विदु, तो कामना को त्याग करना ही वास्तविक त्याग व सन्यास है। तो एक बार गोविंद घोष की पुत्र ने भोग लगाया और भगवान स्वयं आकर की खा ली। तब जब उन्होंने घर में खाली प्लेट लेके आपस आए तो उनके पिताजी पूछे, अरे ये प्रसाद कहां गया? तो ठाकुर जी कहे कि मैं जो खाया आपके हाथ से आप किसी को नहीं बताना। तो इन्होंने बताया नहीं, कि मुझे पता नहीं है। तो उनके पिताजी बहुत डांटने लगे। तो फिर उन्होंने आज जब उनके पर पिटाई पड़ा तो उन्होंने बता दिया। और भगवान कहते कि तुम यदि बता दोगी तुम मर जाओगे। तो जो ही उनका पुत्र का मृत्यु हो गया तो गोविंद घोष ने लोने लगा, ये क्या हो गया? तो गोपीनाथ के पास जाकर की कहने लगे, मेरी एक ही बेटा था तुम इसको मार दिए, फिर आगे मेरी सात कर्म कौन करेगा? तो उन्होंने पूजा नहीं किया। तो गोपीनाथ ने कहे कि आज से मैं आपकी बेटा बन के रहूंगा। और अभी तक गोविंद घोष की श्राद्ध कार्य कौन कर रहे हैं? प्रतिवर्ष आज के दिन गोपीनाथ स्वयं मायापुर से लगभग 2-2.5 घंटे के रास्ता है, कौन सा, सिमलिया डिस्ट्रिक्ट पर। अब लोग जानते हैं कि आज के दिन इतनी बड़े उत्सव होता है, जो गोपीनाथ विग्रह को क्या करते हैं, आज गोपीनाथ विग्रह क्या करते हैं, बाल काट देते हैं, बाल उतार देते हैं, ऐसा जैसे श्राद्ध का दिन सिंपल ड्रेस पहनते हैं ना बेटा। तो स्वयं भगवान आज आकर के क्या करते हैं, सर्व करते हैं, अपने पितृ कार्य करते हैं, श्राद्ध कार्य। तो इसे कौन भगवान है जिन्होंने भक्तों के लिए अपने को बेचते, अपने मान सम्मान सब कुछ। तो इसलिए अत्रि मुनि कह रहे हैं कि मैं वही भगवान के शरण में जाता हूं जिन्होंने ये सृष्टि की सर्जन फाड़न और संहार करके भी वो परमेश्वर पद में स्थित रहते हैं। तो समय तो हो चुका है तो मुझे भी गालियां पड़ेगा क्योंकि यज्ञ अग्नि को आप रोक देना है, आग तो जल रहा है पेट में, हवन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कोई है क्या प्रश्न? इसलिए कोल्हापुर आ गई छोड़ करके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।